دوسرے بھائی سے جگہ مانگ رکھی ہے, بولے صاحب برات کے لیے آپ کی جگہ آپ کی تیار ہے نا؟ ہاں بولو ہے. آپ کو ایک پرکار سے پورا ہمارے گھر میں شادی ہے, وہ ہوگی تو آپ کو نہیں ملے گی. بولے صاحب آپ تو ہم کو دے چکے. بولے دے چکے تو دے چکے, دوسروں کو نہیں دیتے, پر ہمارے گھر میں ہو بیاہ ہوگا تب تو ہم کام میں لائیں. اس نے تو پہلے ہی دو جگہ اور مانگ رکھی ہے. بولے کوئی بات نہیں, اپنا تو کام چل جائے گا, دوسری جگہ مانگ رہی. تو اس طرح سے مکان ہے, چیز ہے آج کل چکی, جس کے ماں ہم دے دیں گے ایسا بطن دے کر کے بھی نہیں دیتے, اور دینے میں بھی جنم کرتے ہیں. کل آئیے صاحب, پرسوں آئیے صاحب. وہ کہتا ہے کہ اب تو ایک پرکار سے دلہا نزدیک آ گیا. تو مجھے صاحب یہ کیا ہے, تو اب برات ہی نہیں ہے, تو برات کیا ترنے کے بعد ہم کیا کریں گے اس چیز کو لے کر؟ تو دینی والا جو گھڑی ہے وہ بھی جی میں کشت کر کر کے دیتا ہے, اکالم کار کرتا ہے ایک پرکار سے. ارے لینے والے کے یہ رہتا ہے کہ پہلے سے لے جا کر اکٹھا کر لو, نہ معلوم پھر ملے یا نہ ملے. جگہ بھی اپنا پہلا قبضہ کر کے تالا بند کر دو, نہیں تو موقع پر شاید نہ ملے. تو لینے والا کا جو ہے, مانگنے والے کا ویوہار بھی نیچے درجے کا اور دینے والے کا ویوہار بھی نیچے درجے کا, یہ کلجو کی بات. تو سجو اور کلجو میں کتنا انترا پڑ گیا, کتنا ڈفرنس ہے, دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت ہی ایک پرکار سے ڈفرنس ہے. تو وہ سجو کی جو بات میں آپ کو بتائی وہ مکتی کے دینے والی ہے, نہیں کہ آج کل کے کلجو کی جو بات ہے وہ مکتی کے دینے والی ہے. کنجو کلجو کے بیچ کے میں ہوں گی, ہمارا ویوہار سجو کے جیسا ہوئے تو وہ مکتی تو ہماری اپنے سنجو کی ریزرو ہے. تو کوئی کلجو اور سجو کے واسطے کوئی بات نہیں ہے, بھاو اونچے درجے کا ہونا چاہیے, تیاگ ہونا چاہیے. جی ہمارے ہردے میں تیاگ ہے تو ہم ایک پرکار سے آپ کی چیز گرہن کر کے, آپ کی چیز لے کر کے بھی ہم مکت ہو سکتے ہیں. اور ہمارا میں تیاگ نہیں ہے تو داتا کی بھی مکتی نہیں ہوئی. تو سنسار کے وہاں نشکام جو بھاو ہے وہ یہ سو اتم چیز ہے. مکتی نشکام بھاو سے ہوتی ہے, نہ کہ کریا سے. تو نشکام بھاو سے ہم کو کریا کرنی چاہیے. تو مکتی کے وشے کے بیچ کے ماں تیاگ ہی پردھان ہے. اور یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ کوئی گماستا ہے تو اس کی مکتی نہیں ہوگی, مالک کی ہوگی. یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو داتا ہے اس کی مکتی ہوگی, گریتا کی نہیں ہوگی. تتو سمجھنا چاہیے, رہس سمجھنا چاہیے کہ واسطو کے ماں جہاں تیاگ ہے, جہاں نشکام بھاو ہے, وہاں ہی سو مکتی براجمان ہے. اپنا بھاو اس کوٹی کا بنانا چاہیے. نارائن 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 سریمن نارائن نارائن سریمن نارائن نارائن سریمن نارائن نارائن چندر کی مٹ ونسی والے. ہمارے پاس بہت سے بھائیوں کے پتر آتے ہیں, کئی بھائی لکھتے ہیں کہ ہم एक प्रकार से गीता प्रेस की सेवा करना चाहते हैं। हम पूछते हैं कि एक प्रकार से खर्च आप कितना लेंगे? बोले खर्च तो हमको कुछ लेना नहीं है, कि केवल मात्र एक हम है, हमारी स्त्री है, चार बाल बच्चे हैं, बस उनका केवल निर्वाह हो जाए और हमको कोई कुछ जरूरत नहीं। तो उनका निर्वाह कम से कम कितने रुपया हो जाएगा? कि सिर्फ 100 रुपये की, 100 रुपया में सब काम चल जाए। हम तो सेवा भाव से करना चाहते हैं और हमारे कोई आवश्यकता नहीं। आप ने क्या पढ़ा है, कितनी योग्यता है, क्या काम आपने किया है, सब बात पूछते हैं, मिलते हैं। हमने समझा कि नहीं, ऐसा आदमी तो इस योग्यता वाला हमारे को दूसरा 50 रुपया में मिल रहा है। तो हमने कहा भाई साहब ठीक है, हमारे पास आदमी है और आपको हम कष्ट देना नहीं चाहते, यानी गीता प्रेस को सेवा की आवश्यकता नहीं है। तो साहब हम जब काम करना चाह रहे हैं तो आप मर्जी से काम करा लीजिए। हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ सत्संग भी हो, भजन भी हो, अपने जीविका भी चल जाए। हम कहते हैं भैया बात यह है कि आपकी जैसी योग्यता वाले यहाँ हमारे 50 रुपये में काम करते हैं और आपको 100 रुपया तो महीना देवे, और फिर आपका ऋण भी गीता प्रेस के ऊपर कायम ही रहा कि हम गीता प्रेस की सेवा करना चाहते हैं। आप ये कहते हैं कि मेरी योग्यता तो 50 रुपये की है, किंतु मैं गरीब आदमी हूँ, गीता प्रेस से किस मैं सहायता चाहता हूँ। तो हम सोचते भी इसकी सहायता हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो एक बात ही, आप तो हमारे सिर के ऊपर एक प्रकार से बोझा रखते हैं कि हम गीता प्रेस की सेवा करना चाहते हैं। अरे सेवा करना चाहते हो कि सेवा कराना चाहते हो? 100 रुपया का आदमी हुए और 50 रुपया ले हुए तब तो उसकी सेवा हुई, और आज भी तो 50 रुपया अगर लेता है 100 रुपया तो ये तो सेवा करानी हुई, सेवा करने का काम है। तो आजकल ऐसे सेवक मिलते हैं, बहुत आदमी उनके पत्र आते हैं, हम कहते हैं हमारे को आवश्यकता नहीं सेवा कराने की। तुम दूसरी जगह चेष्टा करो, तुम जब सेवा करना तुम चाहते हो तो आजकल करानी बहुत मिल जाते हैं, सेवा करानी दुनिया में बहुत है। तो एक भाई समझो कि 100 रुपया तनख्वाह देकर के और 200 रुपया का काम करता है, 500 रुपया का काम करता है, तो वो गीता प्रेस की सेवा करता है। और एक भाई 100 रुपया लेकर के 50 रुपया का काम करता है तो वो तो एक प्रकार से गीता प्रेस के ऊपर भार है, उसका बोझ है। गीता प्रेस के काम करने और अपने पदाधिकारी ये देखते ही इसकी तो आफत है, इसको हटाओ किसी प्रकार, इसका तो गीता प्रेस पर एक बोझ है। एक भाई जो है दिलचस्पी से काम करता है, न समय की चोरी करता है और न बल की चोरी करता है, न बुद्धि की, अपने शक्ति के अनुसार खर्चता है और पूरा समय देता है और बुद्धि भी लगाता है और अच्छे भाव से करता है, तो वो अपना पूरा वेतन देकर के भी गीता प्रेस का हितैषी है और वास्तविक में अपने दिल से सेवा करता है, गीता प्रेस का काम भी करता है और साथ साथ में अपना कल्याण भी करता है। और एक आदमी मन लगा करके नहीं करता, तत्परता से काम नहीं करता, बुद्धि तो उसमें है किंतु लगाता नहीं, बल तो उसमें है किंतु उसका प्रयोग ठीक करता नहीं, समय तो उसके हाथ में है किंतु देता नहीं, कम से कम समय देना चाहता है, कम से कम खटना चाहता है, कम से कम परिश्रम कम करना चाहता है। समझो कि 8 घंटा की ड्यूटी है तो चेष्टा करता है कि 7 घंटा ही काम देखें, 6 घंटा ही देखें, और 6 घंटा जो काम देखता है उसके जिसके वहां भी एक अपना समय ऐसा आराम में ज्यादा बिताना चाहता है, परिश्रम का काम करना नहीं चाहता। और जितने काल परिश्रम का काम करता है उतने काल भी अपने उसमें जितनी बुद्धि लगानी चाहिए नहीं लगाना चाहता। वो कहता है कि मैं गीता प्रेस की सेवा करता हूं, तो ऐसे सेवा करने वाले भाइयों से तो हम लोगों को दूरी रहना चाहिए, कहना चाहिए हमारे को सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सी समस्या है उनकी, जाकर आप सेवा करिए। अपना तो समझो कि सेवा करने वाले आदमी ज्यादा मात्रा में है, एक प्रकार से आवश्यकता नहीं है, और जहां आवश्यकता है वहां जाकर चेष्टा करिए आप। तो जो आदमी अपने शक्ति के अनुसार कोशिश करता है, बुद्धि के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार, रात दिन उसके वास्ते खूब खड़कर करता है, अपनी जितनी शक्ति है वो सब पूरे रूप से देता है, तो वो वेतन लेकर के भी अपने आत्मा का कल्याण कर रहा है। समझो कि आपने वेतन लेकर के भी योग्यता से अधिक नहीं, योग्यता के अनुसार वेतन लेकर के भी वो एक प्रकार से संस्था का अपने हित कर रहा है, इस वास्ते अपना कल्याण कर रहा है। और एक आदमी सोच रहे कि उसकी हैसियत है, गीता प्रेस से वो 50 रुपए लेता है, अपने योग्यता से वेतन कम लेता है, पर ये दिखलाता है कि भी हम यहां कहीं भी 100 रुपया पा सकते हैं, किंतु यहां हम 50 ही लेते हैं। हम कहते बहुत अच्छी बात, तुम्हारी बड़ी उदारता है, किंतु वो एक प्रकार से समय भी कम लेता है और बुद्धि भी नहीं लगाता है और खर्चा भी नहीं है। तो हम समझते हैं कि ठीक है भैया, ये 100 रुपया का आदमी है और 50 रुपया का काम करता है, 50 रुपया एक प्रकार से थी, नहीं आदमी 100 रुपया का है और लेता 50 रुपया है, तो काम भी 50 का करता है, तो देखा अपना घाटा तो है नहीं। ठीक है भैया, एक प्रकार से तुम आप लोग उदारता से काम करते हो, 100 की योग्यता 50 ही लेते हो, बड़ी अच्छी बात है, किंतु वो वास्तु के बीच के मां अपना कल्याण नहीं कर रहा है, वो एक प्रकार से धोखा ही दे रहा है कि जिसकी योग्यता उसको काम में नहीं ला रहा है। तो 50 रुपया लेकर के भी वो खतरा में है, क्योंकि अपना झूठी बड़ाई करता है, झूठा बोझा इस पर रखता है कि भी मैं 100 रुपया का आदमी होकर 50 रुपया लेता हूं। अरे तू काम भी तो 50 का करता है भैया, आदमी तो तू शोका है कि तो अपने तो यहां परिश्रम करता नहीं, तुम्हारे योग्यता हमारे क्या काम आवे। तो एक आदमी में योग्यता रहते हुए भी अरे वो योग्यता उसमें लगाता नहीं, तो उसकी योग्यता गीता प्रेस के कोई काम में नहीं आती। बुद्धि होकर के भी उसके वास्ते बुद्धि नहीं लगाता, उसकी बुद्धि अपने क्या काम आवे। आप में बहुत बुद्धि है, किंतु वो बुद्धि आप हमारे लिए खर्च नहीं करते, तो आपकी बुद्धि हमारे क्या काम आई। आपके पास लाखों रुपये हैं, किंतु आप हमारे को मदद नहीं करते, तो आपके रुपये हमारे क्या काम आए। तो भाव यह है कि नियत जो है वो सबसे बढ़ करके है, तो नियत उस कोटि की होनी चाहिए, सेवा करके भी वाणी से नहीं करना चाहिए, और हृदय का मां भी ये भाव नहीं रखना चाहिए कि हम सेवा करते हैं, उपकार करते हैं किसी। और जो उच्च कोटि के जो पुरुष होते हैं वो ऐसे ही होते हैं कि काम कर करके भी एक प्रकार से नहीं कहते, और करते हैं किंतु कहते नहीं। और दूसरे जो हैं बड़ाई चाहने वाले, वे कहते खूब हैं करते कुछ नहीं। तो ऐसे आदमी तो संसार में आपको बहुत मिलेंगे कि अपनी बड़ाई करने वाले, डींग मारने वाले, और वास्तव में समय पड़े काम के मां आपको धोखा देने वाले, उनको यहां भी खतरा है पर लोक में भी खतरा है, उनको लोगों को भी खतरा है, और उन और उनसे उनको आपको भी खतरा है। तो जो आदमी धोखा देता है, जो आदमी ऊपर का दफान लेकर के केवल मान बढ़ाई चाहता है, तो मान बढ़ाई का किंग करे उसे कुछ होना नहीं है। और जो उस कोटि के जो पुरुष होते हैं, वे अपने गुणों को लखो करके छिप करके अधिक से अधिक काम करते हैं और दिखलाते कम हैं, लोगों की दृष्टि में इतना नहीं जाते और काम खूब करते। तो हम लोगों को अपनी आत्मा के कल्याण के लिए निष्काम भाव से काम करना चाहिए, इसका नाम निष्काम भाव है। हम किसी की सेवा करें, उपकार करें, किसी त्याग करें, तो दूसरे को जनावे नहीं। जान गया कोई आदमी तो हम अपने ऊपर कलंक समझे, हमने तो नहीं जनाया, किंतु कोई जान गया तो हमारे लिए लज्जा की बात है, शर्म की बात है, दुख की बात है। हम फिर कोशिश करें कि भविष्य में ऐसा न हो कि कोई जान गया। तो ये निष्काम भाव है, इससे मुक्ति होती है। और हम इसको जनावें कि साहब हम जो एक प्रकार से दिन रात गीता प्रेस का काम करते हैं, एक पैसा लेते नहीं, अपने घर का खर्च लगा करके काम करते हैं, और वास्तव के मान यदि हम दिल से काम कर रहे हैं, सच्चा काम कर रहे हैं, और जो कहते हैं बात सच्ची है, तो भी हमारे लिए वो कलंक है, वो हमारा निष्काम भाव नहीं, सहकाम भाव है। हम समझो कि न समय की चोरी करते हैं, न बुद्धि की चोरी करते हैं, न बल की चोरी करते हैं, अपना बल बुद्धि का प्रयोग करके और घर का खर्च खा करके काम करते, किसी भी परेशान नहीं ले रहे, किंतु एक प्रकार से थी खाली हम कहते हैं मान बड़ाई प्रतिष्ठा के लिए। और लोग कहते हैं साहब ये बात जो कहते सच्ची बात, ऐसी बात ही है। तो उस हमारी उत्तम दर्जे की क्रिया होकर के भी उसमें अहंकार घुस गया है, उसमें हमारी उस कोटि की नीयत नहीं है, उस कोटि का भाव नहीं है, क्रिया हमारी ठीक है, उपकार भी हम ठीक करते हैं, किंतु उससे हमारी मुक्ति नहीं हो सकती, भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। बात सच्ची होकर के क्यों नहीं हो सकती कि वो हमारी सेवा निष्काम सेवा नहीं है, तो हम तो रुपया तो लेते ही नहीं, फिर निष्काम क्यों नहीं? तन मन धन से सेवा करते, रुपया भी खर्च करते हैं, मन भी लगाते हैं, शरीर भी लगाते हैं, और फिर भी वो एक प्रकार से मुक्ति के देने वाली नहीं है। बोले नहीं, क्यों? कि तुम नाम चाहते हो? बोले नाम तो चाहते हैं, तुम्हारी कोई बढ़ाई करे तो तुमको अच्छी लगती है कि नहीं? बोले लगती है। अरे कहीं तुम जाओ, तुम्हारा कोई सत्कार करे, मान करे, ओहो बोले गीता प्रेस के प्रधान आदमी आए हैं, तो तुम वो चाहते हो नहीं? सब क्या कह खुश होते हुए होते, तो तुम्हारा निष्काम भाव कहाँ रहा? तुम तो मान बढ़ाई प्रतिष्ठा के लिए करते हो, मान बढ़ाई प्रतिष्ठा तुम्हारे को मिलेगी, और मुक्ति क्या मिलेगी इससे? मुक्ति तो तब मिले कि इन सब को तुम ठुकरा दो, मान बढ़ाई प्रतिष्ठा को तुम कुकर की भिष्ठा के समान समझो और अपने कलंक समझो। दूसरा भी कोई बढ़ाई करे तो तुम्हारे चित्त में लज्जा होनी चाहिए, कोई कहे भी ये गीता प्रेस का प्रधान आदमी है तो तुम्हारे चेहरे पर लज्जा होनी चाहिए, मन में दुख होना चाहिए, और ये भीतर से इच्छा नहीं होनी चाहिए कि ये हमारा परिचय दे दे। कहीं हम गए, सुन लो कि पुरी में गए या गया जी के वहां गए, और धर्मशाला का जो मुनीम है, गुमास्ता है, उसको कहा भी हम को एक कमरे की जरूरत है, हम अपने पिता पिता मह की पिंड देने के लिए आए हैं और एक महीना यहाँ रहेंगे। बोले साहब यहाँ तो कमरे सभी रिजर्व हो गए। दूसरा आदमी कहा कि आप जानते हो नहीं हो क्या? बोले साहब नहीं जानते। बोले आपने जयदिया जी गोविंद का है और इनको तो जगह देनी चाहिए। बोले ऐसी बात है। फिर वो आता है साहब हम आपको पहचाना नहीं, समझा आपने आपके लिए कोई कमी नहीं है, आपको दो कमरा मिल जाएगा, दो या तीन मिल सकता आपको, आपका परिचय नहीं था इस बात से हम ना कर दिया, तो हमारे कसूर को माफ करना। फिर हम उस अपने कमरों को लेते हैं, हमने कहा भी कि ये आपने कौन हमारा परिचय दिया, मुझे तन सुखराज जी ने दिया। हम कहेंगे तन सुखराज क्या आप हमारे को बिक्री करते हो, क्या जरूरत है, जैसे लोग रहते हैं सब रहते, आप हमारा परिचय क्यों दिए, ये हमारा भाव तो ठीक है। और हमने कहा कि आपने बहुत अच्छा किया, हम तो अपने मुख से कहते नहीं और तकलीफ होती, आपने बहुत अच्छा किया और हम बड़े खुश हुए एक प्रकार से। तो हम क्या कर रहे हैं कि हमारी जो इज्जत है, हमारी जो प्रतिष्ठा है, उसको बेच रहे हैं और कमरा खरीद रहे हैं। दो कमरों के बीच के वहां अपनी हैसियत को, अपनी इज्जत को हम बिक्री कर रहे हैं। तो ये सैकाम भाव है। हमको तो अपना परिचय देकर के अपना व्यक्तिगत तो स्वार्थ की सिद्धि करनी ही नहीं चाहिए। और दूसरा भी इस प्रकार से थी, हमारा परिचय देकर के और स्वार्थ सिद्ध, हमारा स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है, तो वो भी हमारे लिए घृणा करने के योग्य, त्याग करने के योग्य, हमको नहीं देना चाहिए। फिर वो हमारे को कमरा देना चाहे तो हमको ये करना चाहिए कि भाई हम इस धर्मशाला में नहीं ठहरेंगे। क्यों कि आप तो एक प्रकार से थी मुझको एक बड़ा आदमी समझ करके, ऐसा समझ करके ये दे रहे हैं दूसरे आदमियों से परिचय पा करके। हम तो साधारण रूप में आकर के जितना हमारा हक हो सके एक साधारण आदमियों का, बस उसी हैसियत से हम चाहते हैं, हम इस हैसियत से नहीं चाहते। तो हम अपना परिचय देकर के, हम बड़े आदमी हैं, ये परिचय देकर के यदि वहां हमारे को कोई जगह मिले तो वो हमारे क्या करने के योग्य, घृणा करने के योग्य। और यदि एक साधारण की हैसियत से, जैसे और भी 50 आदमी आए, हम भी आए, उनको जैसे उस जगह मिलते ऐसे हमारे को मिले, वो ठीक है। तो अपना जो रबाब एक है, या अपनी जो इज्जत है, या अपना जो श्रेष्ठता है, किसी भी प्रकार की श्रेष्ठता है, उसको बेच करके यदि हम बदले के में आराम चाहें, तो वो हमारा आराम जो है तो हमारे लिए हराम है, घृणा करने की जो वो निष्काम भाव। जहां निष्काम भाव है, जहां स्वार्थ का त्याग है, वहां ही मुक्ति विराजमान रहती है। और जहां स्वार्थ है वहां उसके ओट में नरक रहता है, उस स्वार्थ का नाम ही लोभ है। और ये तीन जो है सो एकदम नरक के देने वाले, त्रिविदंग नरक से एकदम द्वारंग नाशन महात्मा ने काम क्रोध तथा लोभ तस्मा तेतर त्रियंग तेत, काम क्रोध लोभ ये तीन साक्षात नरक के द्वार हैं और ये आत्मा का पतन करने वाले हैं। इसलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। भगवान ने अर्जुन के लिए गीता की 16 अध्याय के 21 के श्लोक में ये उपदेश दिया। तो इसको ख्याल में जाकर के और हरेक काम के बीच के मां हमको अपने स्वार्थ का त्याग करना चाहिए। मान और बड़ाई प्रतिष्ठा को एक विष्ठा के समान समझ करके, मैले के समान समझ करके इसे दूर रहना चाहिए, ठुकरा देना चाहिए। त्रिलोकी का ऐश्वर्य और मान बड़ाई प्रतिष्ठा हमारे को मिले तो नजर उठाकर हमको नहीं देखना चाहिए। अपना कहीं हक भी हो तो उसका हक का भी त्याग कर देना चाहिए। जहां मान बड़ाई प्रतिष्ठा के साथ में समझ जुड़ जाता हुए तो उसे दूर रहना चाहिए, वही हमारे लिए कल्याणकारक है। और समझो कि न्याययुक्त जो लोभ है वो भी हमारे लिए कलंक है, और अन्याययुक्त तो है ही, माने है तो लोभ ना। हम झूठ कपट बेईमानी तो नहीं करते, किंतु एक लोभ से रुपया तो संग्रह करते हैं, तो रुपयों का संग्रह करना है लोभ बुद्धि से, वो भी हमारे लिए कलंक है। और अन्याय से रुपया इकट्ठा करें वो तो महापाप है। इसी प्रकार से थी समझो कि हम न्याययुक्त भी क्रोध करें तो वो भी हमारे को नरक में ले जाने वाला है, और अनुचित अन्याययुक्त किसी की हिंसा करें दुख देवे वो तो नरक है ही, नरक के देने वाला है ही। इसी प्रकार से थी। न्याय युक्त भी अपने स्त्री के साथ में सहवास है और भी कोई कामना की पूर्ति है, उचित है, न्याय युक्त है, तो उसे नरक तो नहीं होता किंतु उसे कोई मुक्ति नहीं होती। और यदि उसमें स्वार्थ का त्याग है तो उसे मुक्ति हो सकती है। तो वास्तव में काम क्रोध लोभ ये न्याय युक्त है एक प्रकार से तो भी खतरे की चीज है, और अन्याय युक्त है तो महा खतरे की चीज। तो हम लोगों को हर एक काम के बीच में अपना स्वार्थ का त्याग करना चाहिए और निष्काम भाव से काम करना चाहिए, और निष्काम भाव से सेवा करके हम इस बात का दावा रखें कि हम निष्काम भाव से सेवा करते हैं, तो दावा रखने के साथ ही वो चीज सहकाम हो जाती है। तो इन्हें वाणी से कहना चाहिए कि हम निष्काम भाव से सेवा करते हैं, और उन्हें अपने हृदय के मां भाव रखना चाहिए कि हम निष्काम भाव से सेवा करते हैं, तब वो हमारा निष्काम सेवा वो हमारी निष्काम सेवा होती है। नहीं तो मान बड़ाई प्रतिष्ठा से थी वो सब हमारी सेवा दूषित हो जाती है। नारायण 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 रामचंद्र की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय।